नहेमायाह दीवार के पुनर्निर्माण के लिए लौट रहे हैं। जरुब्बाबेल ने बाबुल में निर्वासन से यरूशलेम तक पहले समूह का नेतृत्व किया था। एज्रा ने वर्षों बाद दूसरे समूह का नेतृत्व किया और मंदिर को बहाल किया, लेकिन यरूशलेम के चारों ओर की दीवार को नहीं। लगभग 10 से 15 साल बाद नहेमायाह को मिली एक रिपोर्ट के कारण वह यरूशलेम जाना चाहता था। 20वें वर्ष के किसलेव महीने में, जब मैं शूशन के गढ़ में था, हनानी मेरा एक भाई कुछ अन्य लोगों के साथ यहूदा से आया। उन्होंने मुझसे कहा, जो लोग बंधुआई से बच गए और वापस आ गए हैं, प्रांत बड़े संकट और अपमान में है। यरूशलेम की शहरपनाह तोड़ दी गई है और उसके फाटक आग में जला दिए गए हैं। जब मैंने वे बातें सुनी तो मैं बैठ गया और रोने लगा। कुछ दिनों तक मैं शोक मनाता रहा, उपवास करता रहा और स्वर के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा। जब नहेमायाह को शराब परोसी जा रही थी तो राजा ने उसका उदास चेहरा देखा और पूछा कि उसे क्या परेशानी हो रही है। परिणामस्वरूप नहेमायाह को उस दीवार का पुनर्निर्माण करने के लिए यरूशलेम जाने का अधिकार दिया गया, जिसे करने का विचार प्रभु ने उसके हृदय में रखा था। दीवार की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद उसने काम करने वाले सभी लोगों से कहा, आप देख रहे हैं कि हम किस मुसीबत में हैं। यरूशलेम कैसे खंडहर हो गया है और उसके द्वार जला दिए गए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह बनाएं कि हमें फिर ठट्ठों का सामना न करना पड़े। और मैंने उनसे अपने परमेश्वर के उस हाथ का वर्णन किया जो मेरी भलाई के लिए है, और वे वचन भी जो राजा ने मुझसे कहे थे। और उन्होंने कहा, आओ हम उठें और निर्माण करें। दीवार के पुनर्निर्माण के लिए वापसी से मुख्य बिंदु। व्यक्ति को समस्या और उसके आसपास की स्थिति को पहचानना चाहिए। एक इच्छुक हृदय रखें जो ईश्वर को आपका उपयोग करने की अनुमति दे। मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। दूसरों को ईश्वर की इच्छा संप्रेषित करें। दीवार का पुनर्निर्माण। फारस के राजा ने अपने पिलानेहारे को यरूशलेम जाकर शहरपनाह का पुनर्निर्माण करने की आज्ञा दी। नहेमायाह ने सबसे पहले बेबीलोन की आग से नष्ट हुई टूटी हुई दीवारों और फाटकों का सर्वेक्षण किया जिसने यरूशलेम को जला दिया था। उसने लोगों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि अब समय आ गया है, आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह का निर्माण करें ताकि हमें फिर से उपहास का सामना न करना पड़े। इसलिए उन्होंने दीवार का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। उस क्षेत्र में रहने वाले गैर यहूदी क्रोधित थे, बहुत क्रोधित थे, उपहास कर रहे थे और उसके भाइयों और सामरिया की सेना की उपस्थिति में कहने लगे, ये कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या वे इसे अपने लिए बहाल करेंगे? क्या वे बलिदान देंगे? क्या वे एक दिन में खत्म हो जाएंगे? क्या वे कूड़े के ढेर में से पत्थरों को फिर से जीवित करेंगे और उस पर जलाए गए पत्थरों को भी पुनर्जीवित करेंगे? लेकिन पुनर्निर्माण जारी रहा क्योंकि लोगों के पास दिमाग था। चूंकि उपहास से काम नहीं बना तो उन्होंने युद्ध छेड़ने की साजिश रची। न तो यह काम किया क्योंकि एक समूह पहरा दे रहा था जबकि दूसरे ने दीवार खड़ी कर दी थी। उनका विश्वास यह जानकर मजबूत था कि हमारा भगवान हमारे लिए लड़ेगा, इसलिए दीवार का पुनर्निर्माण किया गया। सब कुछ ठीक नहीं था क्योंकि रईसों और अधिकारियों ने अपने भाइयों का फायदा उठाया और उन्हें गरीबी में धकेल दिया। नहेमायाह क्रोधित हो गया और उन पर आरोप लगाया कि हमने अपने यहूदी भाइयों को वापस खरीद लिया है जिन्हें अन्य जातियों को बेच दिया गया था, परंतु तुम उनके साथ अपने दासों के समान व्यवहार करते हो। इसलिए ब्याज की इस बर्दस्ती को छोड़ दें और जो गलत तरीके से वसूला गया है उसे वापस लौटा दें। रईसों और अधिकारियों ने कहा, हम इन्हें बहाल करेंगे और उनसे कुछ भी नहीं लेंगे। दीवार के पुनर्निर्माण से मुख्य बिंदु। क्या हम सचमुच विश्वास करते हैं कि हमारा ईश्वर हमारे लिए लड़ेगा? परमेश्वर के लोग, पुरानी और नई वाचा दोनों के लोग, जब वे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपना दिल लगाएंगे तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उपहास किया जाएगा और उन्हें धमकाया जाएगा। आध्यात्मिक जीवन का पुनर्निर्माण। यरूशलेम की दीवार को बहुत विरोध के बावजूद फिर से बनाया गया था। उनके सरदारों और अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न बंद हो गया और संपत्ति बहाल हो गई। लोगों के दिलों में आध्यात्मिक जागरूकता घर करने लगी। लोग जलद्वार के चौक में इकट्ठे हुए। हारून के वंशज एज्रा ने मूसा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ना शुरू किया। तब नहेमायाह, एज्रा और लेवियों ने लोगों को शिक्षा दी। परमेश्वर का वचन सुनकर वे रो पड़े। उन्होंने इसे एक पवित्र दिन घोषित किया और खाने और आनंद करने के लिए भेज दिया, क्योंकि उन्होंने उन शब्दों को सुना और समझा था जो उन्हें बताए गए थे। अगले दिन सब लोगों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष, याजक और लेवी व्यवस्था के वचन सीखने के लिए एज्रा शास्त्री के पास इकट्ठे हुए। सभी लोग अपने और अपने पिता के पापों को मानने लगे और मूसा की व्यवस्था की आज्ञाओं का पालन करने लगे। उन्होंने लिखित रूप में दृढ़ वाचा बांधी और शाप दिया और शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो परमेश्वर के सेवक मूसा ने दी थी, और हमारे प्रभु यहोवा की सभी आज्ञाओं और उसके नियमों और विधियों का पालन करेंगे। आध्यात्मिक जीवन के पुनर्निर्माण से मुख्य बिंदु: ईश्वर और उसके वचन का सम्मान करें, चाहे वह ईश्वर द्वारा मूसा के माध्यम से दिया गया हो या ईसा मसीह और उनके प्रेरितों के माध्यम से दिया गया हो। उन्होंने परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को, जो अनादि से अनंत तक है, पहचानकर अपने पापों को स्वीकार कर लिया। पाप को हटाकर अपना जीवन बदलें, पश्चाताप करें। उसकी इच्छा पूरी करना शुरू करो। दया की याचना करो।